ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया, भारत की भूमि पर दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर। जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, भारत की भूमि पर।
ओम शांति। इस रात्रि सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का ये सत्र बहुत विशेष है। आप देख रहे होंगे पिछले एक दिन से, डेढ़ दिन से, दो दिन से कि जिस स्थान पर आप आए हैं उस स्थान पर सभी के अंदर जो सेवा भाव है, सभी के चेहरों पर जो संतुष्टता और प्रसन्नता है और आसपास वातावरण में जो प्रेम है, आखिर इसकी नींव क्या है, आखिर किस लक्ष्य से ये संस्था कार्य कर रही है, कैसे ये स्थान ये संस्था बनी, क्या मूल्य है इस संस्था के, तो आज आपको इस संस्था से रूबरू कराने के लिए हमारे बीच में वो हस्ती है आदरणीय आशा दीदी जी, जिन्होंने इस संस्था के मूल्यों को अपने जीवन में बचपन से धारण किया है, जिन्होंने संस्था का वो रूप भी देखा जब इसकी जड़ें समाज में इतनी मजबूत नहीं थी और आज वो स्वरूप भी देख रहे हैं, आप यूं कहें उसका निर्माण आप जैसी हस्तियों के द्वारा परमात्मा ने कराया है, जो आज एक बड़े वटवृक्ष की तरह पूरे विश्व को ज्ञान और शीतलता की छांव दे रही है। आपसे हम अपरिचित नहीं है, आदरणीय आशा दीदी जी से हमारा कल भी परिचय हुआ और कल भी हमने आपके विचारों को जाना था, लेकिन आज एक विशेष लक्ष्य के साथ आप हमारे बीच में हैं। आप ज्ञान प्रज्ञा के साथ साथ वात्सल्य के भी धनी हैं। जितना आपने अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण किया है उतना ही परमात्म पालना भी आपने अपने जीवन में धारण की है और वर्तमान समय न केवल ब्रह्मा कुमारीज के मैनेजमेंट कमेटी के कोर मेंबर लेकिन भारत के वन ऑफ द रीजनल कोऑर्डिनेटर्स भी हैं आप इस वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर है उसके डायरेक्टर भी हैं, इस विंग के एडमिनिस्ट्रेटर, विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं, और जितनी भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को आप देखते हैं उनको ट्रेनिंग कराने के निमित्त कई वर्षों तक ईश्वर ने आपको बनाया है। अपनी लौकिक पढ़ाई में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे, अव्वल रहे, और इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी आप न केवल आगे से आगे बढ़कर अपने जीवन को इतना अपने दृढ़ता से मजबूत बनाया है, लेकिन इतनी सभी जो समर्पित बहनें हैं, समर्पित भाई हैं, उनके जीवन को भी आप उतना ही दृढ़ता प्रदान करती हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि दीदी का वेलकम भी करेंगे और आप सब भी करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का पुनः स्वागत वेलकम करते हैं, और दीदी के द्वारा जानेंगे एक दिव्य कहानी जो आज आप सभी के सम्मुख इस संस्था के रूप में प्रत्यक्ष है।
ओम शांति। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आप में से कितने हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है। मेजॉरिटी। जिनको बिल्कुल नहीं है वो हाथ खड़े करो। बिल्कुल नहीं है वो भी है। जिनको पूर्ण जानकारी हो हाथ खड़े करो। तो मैं शॉर्ट में इतने बड़े इतिहास को थोड़े समय में कवर करने की कोशिश करूंगी। इसकी स्थापना 1936-37 में हुई थी। जो फाउंडर थे साकार रूप में, जिनको दादा लेखराज कहते लक्की बाबू के नाम से जाने जाते थे, वस्तुतः परमात्मा के महावाक्य हैं कि जब धर्म की अति ग्लानी होती है तो मैं आता हूं और आकर क्या करता हूं, अधर्म का नाश सत धर्म की स्थापना करता हूं। तो यदि आप सृष्टि चक्र को देखेंगे, हमने सतयुग पार किया, त्रेता पार किया, द्वापर पार किया, कलयुग के अंतिम चरणों में, और अंतिम चरणों में जितने भी शास्त्रों में कलयुग के चिन्ह दिखाई देते हैं, लिखे हुए हैं, वो सब हमें दिखाई दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मानव आच्छादित होगा। दूसरा, धर्महीन राजनीति होगी। एग्री। मानवता शून्य विज्ञान होगा। एग्री। हां जी ना जी बोलते जाओ। हां जी। अच्छा। प्रेम रहित प्रभुत्व होगा। अंधश्रद्धा युक्त भक्ति होगी। चरित्रहीन मानव होगा। केशों का श्रृंगार होगा। मनुष्य मनुष्य पर चलेगा। ये शब्द लिखे हैं तो आजकल आप फ्लाईओवर्स देख रहे हैं कितने बनते हैं, मनुष्य मनुष्य पर चल रहे, हमारी बिल्डिंग्स कितनी हैं, कितनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, मनुष्य मनुष्य पर चल रहा है। गौ विष्ठा खाएगी, कन्या मुंह से वर मांगेगी, आदि आदि, ये सब चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। और और परमात्मा के महावाक्य हैं कि इनका मैं नाश करता हूं, सद्धर्म की स्थापना करता हूं, तो स्वाभाविक है परमात्मा का आना कब होगा? जब समाज में ऐसी दशा होगी, और ये दशा हमको दिखाई दे रही है। तो लखी बाबू एक हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। अपने व्यापार में बहुत प्रतिभाशाली थे, परंतु उनका जो बचपन था वो जो पिताजी थे वो एक टीचर थे, तो टीचर के नाते से उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए। बाल्यकाल में ही पिता ने शरीर छोड़ दिया था, आपका लालन पालन आपकी काका ने किया। बुद्धि प्रतिभाशाली थी, कुशाग्र बुद्धि के थे, और व्यापार में न केवल कॉमन परंतु राजाओं महाराजाओं के साथ संबंध था। उदयपुर के राजा, इंदौर के राजा आदि, तीन स्थानों पर आपका व्यापार था। कलकत्ता नवीन मार्केट, चार्ल्स हॉग मार्केट जिसको कहते हैं, वहां बाबा की गद्दी थी। बंबई और हैदराबाद सिंध, हैदराबाद सिंध में आप रहते थे, सिंधी थे, कृपलानी परिवार के थे, कृपलानी ब्राह्मण होते हैं, और बाबा के पांच बच्चे थे, तीन कन्याएं थी और दो कुमार थे। मैं बाबा शब्द जब कहूंगी तो आपके लिए कहूंगी, आप नारायण के अनन्य भक्त थे और पूजा के बिना आप जल पान भी नहीं करते थे। श्रीमद् भगवद गीता के पाठी थे, प्रतिदिन पढ़ते थे, और उसके साथ साथ दान पुण्य करना आपके लिए एक शौक था। समाज में बहुत ऊंचा स्थान था, खड़े हो जाते थे, अलग से पहचान थी, सब बातें थी। बाबा को बताया हुआ था कि आपकी आयु मात्र 60 वर्ष है, तो जब बाबा 60 वर्ष के करीब पहुंच रहे थे तो बाबा के अंदर एक वैराग्य की वृत्ति जागृत होना शुरू हुई। अब अचानक गुरु के भक्त थे, 12 गुरु किए हुए थे। उस समय जो सिंध था उसकी दशा बहुत दयनीय थी। जो पुरुष थे वे सिंधी थे, व्यापारी थे, तो यूरोप में स्पेन में उनका व्यापार था। जो महिलाएं थीं उनकी बहुत दुर्दशा थी, वे घर में ही रहती थी, बाहर निकलना अलाउ नहीं। और ये पुरुष व्यापार के कारण बहुत समय बाहर रहते थे, साल, दो साल, पांच साल तक, और ये महिलाएं नेचुरल है आध्यात्म प्रेमी बनती गई। और जो वातावरण था, महिलाओं को जो तिरस्कार, जो कुछ भी आप लोग सुनते हैं महिलाओं के बारे में पहले, वो सब दशा उस समय सिंध में उपस्थित थी। बाबा गुरु को अपने घर में होस्ट करते थे। एक दिन गुरु आए हुए थे और वो प्रवचन दे रहे थे, एकाएक बाबा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और बाबा उठ करके अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। जब कमरे की ओर जाते हैं तो उनकी जो पुत्र वधू थी उनका नाम राधिका था, बाद में ब्रज इंद्रा पड़ा जो हमारे महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज बनी। पुत्र वधु उसकी भी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं उन सबको छोड़ देती हूँ। तो पुत्र वधु फॉलो करती है उनके साथ साथ बाबा की जो युगल है, युगल हम कहते हैं धर्म पत्नी को, वो फॉलो करती हैं। जसोता माता उनका नाम था, तो वो फॉलो करती हैं कि बाबा ऐसा कभी करते नहीं हैं कि गुरु लेक्चर दे रहे हों और बाबा छोड़ करके चला जाए, ये तो गुरु का तिरस्कार है। तो ये कैसे हुआ, क्यों? तो जब वो जाती हैं तो क्या देखती हैं, कमरे की दलहीज में जैसे ही पांव रखती हैं उनको सारा कमरा लाल लाल नजर आता है और बाबा पद्मासन में बैठे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। थोड़ी देर ये खड़ी रहती हैं दोनों, बाबा आंखें खोलते हैं तो आंखें उनको ऐसे लगती हैं जैसे कोई लाइट के बल्ब जग रहे हो। और इससे पूर्व ही उन्होंने आवाज सुनी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, यानी ये पहला साक्षात्कार था। बाबा जब आंखें खोलते हैं तो कहते वो कौन था, कौन था? कोई लाइट थी, कोई माइट थी। तो बाबा जाते हैं अपने गुरु के पास। बाबा ने समझा ये शायद गुरु कृपा से हुआ है, तो बाबा गुरु के पास जाते उन्हें बताते हैं। तो जैसे किसी को कोई बात का पता ना हो तो आप चेहरे से समझ जाते हैं ना, ऐसे बाबा को पता लगा कि गुरु कृपा से साक्षात्कार नहीं हुआ है। वो साक्षात्कार हुआ निराकार ज्योति बिंदु का, पहला साक्षात्कार। ये पार्टी रखी हुई थी बाबा ने, और बाबा बहुत सात्विक प्रवृत्ति के थे, कभी भी मांस मदिरा ये पार्टी इसमें नहीं देते थे। लोग कहते थे कि पार्टी फीकी रही, तो बाबा रमणीकता में कहते तुम तो मुझे कागज के नोट ही देते हो, मैं तो तुमको हीरे देता हूँ। तो अपने असूल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। थोड़े दिन और बीतते हैं तो बाबा को दूसरा साक्षात्कार होता है, वो होता है विष्णु चतुर्भुज का, और आवाज आती है अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी यही हो। अब एक साधारण गृहस्थी और वो भी श्री नारायण के पुजारी, और बाबा को वरदान देते तब तो मैं तो इनकी पूजा करता हूं, मैं कैसे विष्णु हो सकता हूं। बाबा को थॉट्स चलने शुरू होते हैं। तीसरा साक्षात्कार होता है थोड़े दिनों के बाद फिर से, वो साक्षात्कार होता है विराट पुरानी असु सृष्टि का विनाश, महाविनाश, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कलामिटीज आदि। बाबा घबरा जाते हैं। ये साक्षात्कार बाबा को होते हैं 1936-37 में, और आप जानते हैं 1939 के बाद हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया। उसके गिराने से पूर्व बाबा को साक्षात्कार हो गया था, ये चीज से विनाश हो। ठीक है। उसके पश्चात बाबा को इमीडिएटली दूसरा साक्षात्कार होता है जिसमें आकाश से सितारे आते हैं और जैसे वो सितारे धरती पर आते हैं राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं और सारा जैसे स्वर्ग होता है इस तरीके का दृश्य दिखाई दिया और आवाज आती है ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त तुम हो, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। अब बाबा को आश्चर्य भी लगता है और बाबा को परेशानी भी होती है। अब जो हीरे जवाहरात थे बाबा को पत्थर नजर आने शुरू हो जाते हैं, कोई इसमें व्यापार में रस नहीं लगता और बाबा धीरे धीरे डिसाइड करते हैं कि मैं अपना ये व्यापार बंद करूंगा। इधर क्या होता है, गीता रोज पढ़ते थे, अब जब गीता पढ़ते थे तो उसके नए नए मीनिंग इमर्ज होने शुरू हुए, तो कोई बात अच्छी लगती तो हम क्या करते हैं, दूसरे से शेयर करते हैं और से शेयर करते हैं। ऐसे घर में ही एक सत्संग मंडली बन गई और उसमें फ्रेंड्स जो थी महिलाएं अधिक आनी शुरू हो गई, तो माताएं बहनें सत्संग करती थी और ओम की ध्वनि लगाते थे ओम ऐसे करके, तो इसका नाम पड़ गया ओम मंडली, ओम मंडली। उसके पश्चात इधर बाबा ने उधर बाबा कलकत्ता जाते हैं और उनको कहते हैं पार्टनर को भी तुमने जो लेना है सो ले लो, मैं तो अब बिजनेस नहीं करूंगा, काफी हो गया खत्म। तो बिजनेस पार्टनर भी हैरान होता है कि ऐसी क्या बात हो गई, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाबा एकदम स्थिर थे और जैसे वैराग होता है ना दुनिया से, ऐसा वैराग उनके मन में बारंबार आता था। तो उन्होंने पार्टनर ने हिसाब किताब जो किया बाबा ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। बाबा बोले अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, अलफ को आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। और बाबा वहां से कलकत्ता से बनारस आते हैं। बनारस में बाबा के मित्र थे और मित्र की कोठी में रुकते हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर था, वो कोठी मैंने देखी है बनारस की, जिसमें बाबा आके मित्र के साथ रहते थे। तो जैसे दिमाग में कोई चीजें आती हैं तो व्यक्ति ड्रॉ करता है, तो बाबा दीवारों पर चित्र जो थे वो खींचते थे। और बहुत बड़ा लॉन था उस मित्र के, उसका कोठी का, चबूतरे बने, पुराने जमाने में चबूतरे बना देते थे ना लॉन में, ऐसे चबूतरे बने हुए थे। तो वो बताते थे कि रात रात बाबा मनन चिंतन में वहां पर बैठे रहते थे और इस प्रकार से बाबा को साक्षात्कार, फिर चारों धामों का साक्षात्कार हुआ। गुरु भक्ति तो थी ही, अब जो नए नए मीनिंग इमर्ज हुए थे उसमें जो मूल बातें थी जो आज भी हैं, आप आत्मा हैं, आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, आत्मा के शत्रु पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर गृहस्थ में रह के जीवन कमल पुष्प समान बनाना है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना, इस इस प्रकार मूल बातें जो हमारी आज में है। इधर माताओं बहनों की जो मंडली बढ़ती जा रही थी और पुरुष लोग वहां से जब आए अपने विदेश से, तो उन्होंने देखा हमारी माताएं तो बदल गई हैं, ये तो वो महिलाएं हैं ही नहीं, इनका तो बदला हुआ रूप है। तो थोड़ा सा ऑपोजिशन शुरू हुआ कि माताओं बहनों को जाने से रोकना शुरू किया। लेकिन माताओं बहनों को जो लगन लगी हुई थी वो तो उनकी पक्की थी, छूटती नहीं थी। पुरुषों ने सोचा, ये तो सिंधी समाज ने सोचा, ये तो समाज के लिए बहुत हानिकारक चीज है, अगर महिलाएं ऐसे बन जाएंगी तो समाज का क्या होगा। तो अच्छा ऑपोजिशन उन्होंने किया, बहुत कुछ। लेकिन यह कार्य कोई लखी बाबू का नहीं है, दादा लेखराज का ये काम नहीं है। ये कार्य निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा का है, जो इस तन के माध्यम के द्वारा कर रहे हैं, उस समय कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। जहां भगवान स्वयं है, कितना ही ऑपोजिशन हो क्या होगा, बाल भी बांका नहीं हो सकता। मैं थोड़ा स्टोरी और शॉर्ट करती हूं। साधु वासवानी बहुत लोगों ने ऑपोजिशन किए, कोर्ट में ले गए, कोर्ट में हमारी मातेश्वरी जी है मम्मा, मातेश्वरी जिनको हम कहते जगदम्बा सरस्वती, कोर्ट में गए कि इन्होंने घर गृहस्थ जो है वो बिगाड़ते हैं और बहुत कुछ बिगाड़ते हैं, जादू करते हैं, बहुत सारी बात है। कोर्ट में गए कि कोर्ट में गए तो उनको कहा मातेश्वर जी को, आपको गीता की सौगंध लेते हुए कहना है, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर जो कहूंगी वो सत कहूंगी। मम्मा ने कहा, हम उनको मम्मा कहते थे, मम्मा ने कहा मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर देख ही नहीं रही हूं, ईश्वर हाजिर नाजिर है ही नहीं, मुझे तो दिखाई, मैं झूठी कसम कैसे लूं। जज ने कहा ये कोर्ट का ऑर्डर है, आपको लेना होगा। उसका मैं झूठी कसम ले नहीं सकती हूं, हां ये कह सकती हूं जज साहब आपको हाजिर नाजिर देखकर जो कहूंगी। जज ने कहा मेरी कसम थोड़ी लेनी है। तो जज ने उनको अलग कमरे में बुलाया, अलग से बात की और समझ में आई, जज को भी बात समझ में आई। अब छोटे छोटे बाबा के जो व्यापार था, उदयपुर के राजा इन सब, बाबा के पास धन संपत्ति तो बहुत था, तो बाबा ने वैराग्य, मैंने बताया है, बाबा ने अपना सब कुछ एक ट्रस्ट बना करके माताओं बहनों को सौंप दिया, जिससे मातेश्वरी थी, दादी प्रकाशमणि थी और थी, पूरा ट्रस्ट। बाबा को देख करके दो तीन और ने भी अपनी सब धन संपत्ति ट्रस्ट में डाल दी। निश्चित जिस दिन से बाबा ने ट्रस्ट को अर्पित किया, उसके बाद बाबा ने जिंदगी भर कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। अब लोग चाहते थे, सिंधी फैमिलीज थी, अच्छे धनवान थे, प्रतिष्ठावान थे, उन्होंने देखा ये समाज में इस तरीके की बात है, पवित्रता की बात है, काम क्रोध नरक के द्वार है। तो कहते आप ये क्यों कहते हो काम क्रोध नरक के द्वार है। बाबा कहते मैं थोड़ी कहता हूं, ये तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, काम क्रोध नरक के द्वार है, मैं तो नहीं कह रहा। अब है भी सच में लिखा हुआ है, काम क्रोध नरक के द्वार उसमें लिखा हुआ है। तो समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति, अब पार्टीशन हो गया 1947 में, हैदराबाद कराची वहां पर ही बाबा का रहना हुआ, और साथ में बाबा के अन्य भी कई भाई बहने रहने शुरू हो गए थे, लगभग 300 के करीब थे, 300-350। अब इन्होंने सिंधीज ने सोचा कि ये संस्था को हमको खत्म करना है, ये संस्था हमारे समाज के लिए हानिकारक है, इसको हमें समाप्त कर। तो उन्होंने साजिश रची। वो साजिश क्या थी, 47 से लेकर के 50 तक जो वहां पर सल्तनत थी, पाकिस्तानी थे वो लोग, तो बहुत अच्छी संभाल कर रहे थे, बहुत अच्छी संभाल कर रहे थे। परंतु सिंधीज ने कहा, आप तो भारतवासी हो, आपको भारत में ही आना चाहिए। बाबा ने कहा, बिल्कुल भारत में आना चाहिए, हम पूरी व्यवस्था करेंगे, आप भारत आ जाओ। निमंत्रण भेजा, बाबा ने वो निमंत्रण स्वीकार किया, और बाबा पूरा जहाज भर के, आप कभी हिस्ट्री हॉल देखेंगे माउंट में, तो वहां पर पूरा जहाज भर करके बाबा सब भाई बहनों सहित आते हैं। और यहां पर गुजरात के पास में ओखा बंदरगाह है, ओखा बंदरगाह पर आते हैं। जब आते हैं तो सामने कोई था ही नहीं, क्योंकि उनकी तो साजिश थी, संस्था को हमको समाप्त करना है, वहां कोई नहीं था। अब सवाल उठता है, कहां जाएंगे, इतने सबको लेके कहां जाएंगे। तब गुरु गंगेश्वरानंद, उनका संदेश मिलता है बाबा को, आपके लिए माउंट आबू अच्छा है। तो माउंट आबू में इतना बड़ा घर चाहिए, इतना बड़ा घर तो किसी का होता नहीं है जिसमें 300 लोग रह सके। तब बताया मार्केट में आबू रोड के इधर आकर के, जब दीदी मनमोहिनी और एक दो जने साथ में आए घर ढूंढने, तो मार्केट वालों ने बताया, आप लोगों के लिए माउंट आबू में भरतपुर राजा की कोठी है, वो ठीक जगह है। तो भरतपुर राजा की कोठी वो देखी, तो वहां पर वो आज भी है, वो अभी होटल बन गया है, लेकिन वो है। परंतु वो जो कोठी थी, कोठी के सामने शमशान, तो आप जानते हैं शमशान आवाजें लोगों को आती थी, भूत पिशाच सांप ये सब बहुत कुछ था। तो जैसे परीक्षा होती है, ऐसे एक परीक्षा का दौर आरंभ हुआ। 5550 बाबा शिफ्ट हुए, 5550 वो शिफ्ट हुए, और उसके पश्चात परीक्षा पे परीक्षा शुरू। परीक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की थी। कहते हैं, कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसमें कुछ डालेंगे नहीं तो खत्म तो होगा ना। धीरे धीरे धन खत्म होना शुरू हुआ, इकोनॉमी का मौसम चालू हुआ, 15 दिन ज्वार की रोटी और एक ग्लास लस्सी मिलती थी, सवेरे नाश्ता नहीं, जंगल में चले जाते थे, बेरीज खा के आ जाते थे। तो कईयों ने सोचा, ये हालत है, आगे क्या होगा। और कहा जाता है, जब बहू का मूड ठीक नहीं होता, दुखी होती है, तो मायके से भी बुलावा आता है। तो उनके जो संबंधी थे, उन्होंने भी इनको बुलाना शुरू किया, कई गए कई चले गए, काफी अच्छा झाड़ हिला। लेकिन जो ज्ञान योग में जो अनुभवी थे, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना था, वे सब स्थिर रहे। और धीरे धीरे बाबा ने सेवाओं का आरंभ किया 1952 से। सबसे पहले दो बहनों को, दादी मनोहर इंदिरा और दादी आत्म इंदिरा, इन दोनों को दिल्ली भेजा। न जान न पहचान, आपको जाके सेवा आरंभ करनी है, कहां जाएं? किसी को तो पहचानते नहीं। इतने साल, 16 साल, 1937 से लेकर के 52 तक लगभग 16 साल तो दायरे में रहे, बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं। जाएं तो जाएं कहां? यमुना घाट पर दोनों दादियां रहती थी और तपस्या के कारण उनके चेहरे पर जो रूहानियत थी, जो उनके चेहरे पर नूर था, जो उनकी वाणी में रूहानियत प्रवचन करती थी, तो लोग प्रभावित होते थे। दिल्ली में नगर सेठ होते थे लाला जगन्नाथ, उनकी माता जी प्रतिदिन यमुना स्नान करने जाती थी। उन्होंने देखा ये दो कन्याएं लगती तो बहुत भले घर की हैं और यमुना के कंठे पर ऐसे में, तो माता जी उन दोनों कन्याओं को, गौरी शंकर जी का मंदिर है ना चांदनी चौक दिल्ली में, उसकी धर्मशाला में ले आए। अब दादियां भाषण करती थीं, तो भाषण का नेचुरल प्रभाव पड़ता था। मंदिर के पुजारी को होने लगा कि अरे माता जी, ये सारे तो हमारे भगत उस तरफ चले जाते हैं, आप इन देवियों को यहां से ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, यहां से ले जाओ इनको। तो मॉडल टाउन और रोशनारा रोड जो उस क्षेत्र के थे, वहां पर एक कमरा लेकर के आरंभ किया। वहां पर सेवाओं का आरंभ हुआ और पहला केंद्र खुला 151 ई कमला नगर दिल्ली। अब इसके साथ साथ जो कई भ्रांतियां थी वो भी आ गई। भ्रांतियों में जो सिंध में थी भ्रांतियां, पहली भ्रांति ये जो लखी बाबू है ये बंगाल से जादू सीख के आया है, ये सबको जादू करता है। क्यों? क्योंकि उस समय बाबा जिसको दृष्टि देते थे, ये कार्य तो परमात्मा का था, जिसको दृष्टि देते थे उसको साक्षात्कार हो जाता था, तो समझते थे जादू है। दूसरा, ये घर बार छुड़ाती हैं। तीसरा, इनके पास पैसा कहां से आता है। चौथा, ये छोटी छोटी कन्याएं कहां से आती हैं। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के, जो कहें भ्रांतियां, वो इनके अंदर जो फैलनी शुरू हो गई। और सिंध में तो अखबार में रोज छापते थे और बांटते थे, बोलते थे मंडली समाचार पैसो अखबार, ये कह करके अखबार बेचते थे। उसमें सब ऊट पटांग बातें लिखते थे। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों ने भी सुना है जादू करती है, सुना है, सिर हिल रहे हैं, हाँ सुना है। आप लोगों ने सुना है ये भाई बहन बनाती हैं, सुना है। ये भी सुना है आपने, पता नहीं पैसा कहां से आता है। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूं। तो वहां पर देखिए, जादू कोई और नहीं है, जादू ज्ञान का है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उनके साथ मिलकर के हमने नशा मुक्ति अभियान चालू किया हुआ है। तो मेरे को डॉक्टर बनारसी जो कन्वीनर हैं वो बता रहे थे, दीदी लोग हैरान हैं और इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि हम लोगों को कहते हैं नशा छोड़ दो, वो छोड़ते नहीं। ये ब्रह्मा कुमारियां क्या ज्ञान देती हैं जिससे लोग नशा सदा के लिए छोड़ देते हैं? कौन सा ज्ञान देती? कहते इसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे, और ये वास्तविकता है। ये ज्ञान और योग की ही कमाल है जिससे व्यक्ति बुरी आदतें छोड़ देता है। हम बुरी आदतों की तरफ तब जाते हैं जब अंदर खोखलापन है, खालीपन है, उसको पूरा करने के लिए हम बाह्य सहारे लेते हैं। लेकिन जब आपको अंदरूनी संतुष्टि होगी तो आपको बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ज्ञान और योग जो यहां सिखाया जाता है उसका जादू अवश्य है। मैं अपने पिताजी की बात बता देती। एक शाम वो गए हैं, एक शाम सवेरे उठ करके टोटल परिवर्तन। घर में हमारे मीट भी था, अंडा भी था, सब कुछ। उन्होंने नौकर को बोला ये चीजें इस समय मैं नहीं खाऊंगा, फिनिश्ड सदा काल के लिए। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन, एक ही दिन में। और क्या बताया गया था? आपने देवता बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा देवता बनना है। देवता बनना है तो आपको ये चीजें स्वीकार नहीं करनी है। क्या कभी आप देवताओं के मंदिर में वैरायटी प्रकार की सिगरेट, वैरायटी प्रकार की प्याज लहसुन की सलाद ले जाते हो? पुजारी कहेगा बाहर बैठो। जब मंदिर में नहीं ले जाते और आप स्वयं वो बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? बात समझ में आई? फिनिश्ड। तो ज्ञान का जादू है, कोई दूसरा जादू नहीं है। दूसरा जादू हम करें भी क्यों, मैं आपको स्पष्ट बता देती हूं। वी डू नॉट वॉन्ट क्राउड्स, हमें भीड़ नहीं चाहिए। हमें क्वालिटी के वे ही लोग चाहिए जो अपने जीवन को क्वालिटी वाला बनाने का लक्ष्य रखते हो। वाहवा करने वाले, अच्छी चीज तो अच्छी होती है, उसमें क्या बड़ी बात है, परंतु जीवन जिसका बने वो इंपॉर्टेंट है। सब्जी की दुकान पर सब कोई जाते हैं, हीरे जवाहरात की दुकान पे कौन जाएगा? जो खरीदना चाहेगा। तो क्राउड लेके क्या करना है? मनुष्य बनने का, ऊंचा बनने का लक्ष्य रख करके फिर ज्ञान योग ले तब है बात। ऐसे मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूं। एक सज्जन थे, हमारा केंद्र था कमला नगर में, दिल्ली कमला नगर। तो ये अफवाहें बहुत फैली हुई थी, बहुत फैली थी, ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, इनको इनकी आंखों में कभी नहीं देखना, इनकी आंखों में सुरमा होता है, वो सुरमे में ही जादू होता है, वो सुरमा इनका माउंट आबू से आता है, आदि आदि। तो जब ऐसा हुआ तो एक सज्जन भाषण कर रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगी और किस उसके थे वो भी नहीं बताऊंगी। तिकोनिया पार्क कमला नगर का, वहां भाषण कर रहे थे कि देखो ब्रह्मा कुमारियों के पास कभी नहीं जाना। क्यों? इनकी आंखों में सुरमा, ये आंखों में सुरमा डालती हैं। इनके आप जो भोग बनता है, गुरुवार के दिन भोग लगता है, उस भोग में हलवा बनता है, उस हलवे में जादू होता है, वो हलवा कभी नहीं खाना। एक माता थी, उसने सुना हुआ था, वो इनके सेंटर पर गई और वहां पर गुरुवार का दिन था और हलवा बना था। उसने सुना था तो उसने हलवा खाया नहीं, उसने आके वो हलवा अपनी भैंस को खिला दिया। उस भैंस को इतना जादू चढ़ा जो इनके कमला नगर सेंटर पर खूंटा तोड़ के पहुंच गया। अब आप बताओ, वो जो सेंटर था हमारा नरे भाई, सेंटर की सीढ़ियां ऐसे राउंड राउंड थी, अब भैंस जो है ना ऐसे चढ़ी होगी, और तीसरी मंजिल पे हमारा सेंटर था। लोगों की बात है, अफवाह है, तो कोई जादू नहीं है। जादू करना हो तो कोई बड़ों बड़ों पे करो, जिनसे कोई काम कराना हो। सामान्य जनता में हम सभा समाज के बीच में रहते हैं, जादू की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं हिप्नोटाइज कर लेती हैं। अब हिप्नोटिज्म ये भी इलीगल है, अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते हैं। हम तो समाज के बीच में रह रहे हैं, अगर इलीगल काम हम समाज के बीच में रह के कैसे कर सकते ओपनली, और हमें कोई कुछ भी ना कहे, तो नहीं होता। तीसरी बात, इनके पास पैसा कहां से आता है, आप लोगों का भी प्रश्न है, है? कहां से? कोई कहते हैं इनके पास पैसा अमेरिका से आता है। मैं अमेरिका से क्यों आने लगा, क्यों? भारत देश कम है क्या, अमेरिका से क्यों लेंगे? हमारा नियम है, फाउंडर ने हमें सिखाया है, मांगने से मरना भला। आपका हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका हाथ ऐसा होना चाहिए। आपने $10 लेने हैं, ₹10 लेने हैं, आपका हाथ कैसे होगा? आपने ₹1 देना है, आपका हाथ कैसे होगा? देना, आपका हाथ सदा देने वाला होना चाहिए। दूसरा, जितने भी हमारा नियम है, हम लोग कोई डोनेशंस वगैरह नहीं लेते हैं, आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जो बेनिफिशियरीज होते हैं, बेनिफिशियरीज जिनके जीवन से बुराइयां निकलती हैं, जीवन उनका अच्छा बनता है, फैशन परस्त नहीं है, सिंप्लिसिटी है, फालतू आदतें नहीं है, नेचुरल है, उनकी वो जो सेविंग होती है, वो सोचते हैं जहां से हमको इतना लाभ मिला हम उसकी अभिवृद्धि करें। वो फिर हमारी वो रखी होती है भंडारी, उसमें डालते हैं, भंडारी में डाल, जिसको जो डालना। क्योंकि अगर आप हमें देंगे, हम तो उसका रिटर्न नहीं कर सकते। आप उसमें ₹1 डालेंगे, भगवान उसका 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना करेगा। आप मुझे देंगे, मैं कैसे उतारूंगा? भंडारी रखिए, उसमें डाल। दूसरा, जितने भी हमारे बड़े कैंपस हैं, जैसे ये है, भारत में अन्य स्थानों पर भी हमारी 1 रुपी इकोनॉमी, दादी जी माउंट आबू से भेजती है पत्र कि इस तरीके से दिल्ली में ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर बनने जा रहा है, सब भाई बहने मिल करके सहयोग देंगे। तो उसमें हर क्लास में हमारे केंद्र है ना, लगभग 4,500 केंद्र हैं, तो हर क्लास में मान लीजिए किसी क्लास में 30 लोग आते हैं, दादी जी का संबंध होता है भी 1 रुपया हर स्टूडेंट प्रतिदिन डाले, तो एक दिन में कितने हो गए 30 रुपए, एक महीने में कितने हो गए 4,500 केंद्र, तो कितने हो गए जमा हो जाता है ना, धीरे धीरे बूंद 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 करके तालाब होता है। फिर कोई एक भी डालता है तो कोई 10 भी डालता है, कोई 8 आना भी डालता है, जिसकी जैसी होती है। इस प्रकार से हमारा ये सारा फाइनेंस इकट्ठा होता है। साथ ही साथ मान लीजिए मैं इंजीनियर हूं, मैं सोचती हूं कि मैं बाहर इतना कमाती हूं, ठीक है, लेकिन ये बन रहा है आश्रम, खाना पीना रहना मुझे मिल रहा है, मैं अपनी सेवाएं फ्री दूंगी, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगी, सेविंग हो गई। इसी रीति से कोई मान लीजिए किसी के पास सीमेंट का काम है, किसी के पास लोहे का काम है, किसी के पास बिजली का काम है, जितना वो लोग कर सकते हैं अपनी श्रद्धा भावना से अपने आप करते हैं, कम हो गया। आर्किटेक्ट कहता है मैं इतना कमाता हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी इससे लेने। इस तरीके से दादी जी हमें कहा करती थी, अगर आपका 10 लगता है तो हमारा 5 लगता है, क्योंकि सब सेवा करते हैं, ये फर्क पड़ जाता है। इस प्रकार धन, बाकी हम लोग हर वर्ष अपने अकाउंट्स जमा करते हैं सरकार को, फेरा के अंतर्गत हम लोग रजिस्टर्ड हैं, जो भी विदेश का भी है आते, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो अपने अपने देशों को चलाते हैं, हमारा उनके साथ जो लिंक है वो स्पिरिचुअल लिंक है, बाकी और प्रकार का लिंक नहीं है। हाँ, भारत आते हैं, जैसे यहाँ पर भी कुछ लोग पूछते थे कि भाई हम लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, धर्म की जगह है, तो हम कुछ करना चाहते हैं तो वो भंडारी रखिए, उसमें जो आपको करना उसमें कर सकते हैं। इस तरीके से बाकी हमारे कोई रसीद सिस्टम, कोई वो आपको इतना देना ही है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हमारे और सारे सेंटर हमारे निमंत्रण पर खुलते हैं, तो जो निमंत्रण देते हैं वो फिर उसकी पूरी संभाल करने की जिम्मेवारी भी लेते हैं। ओके, फाइनेंस सिस्टम। तीसरा, इनके पास इतनी यंग कन्याएं कहां से आती हैं? आप देख रहे जो बहने हैं सब छोटी छोटी आयु की हैं, सब एजुकेटेड हैं, देख रहे हैं आप लोग, सब एजुकेटेड हैं, छोटी छोटी आयु की। ये बहने अपने माता पिता के साथ क्लास में आती, हर सेंटर पर हमारी क्लास चलती, तो माता पिता के साथ आते हैं। अगर ये कन्याएं, उनका स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है, तब हम पेरेंट्स को कहते हैं कि इसको इस लाइन पर चलाओ। अगर उनका स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड नहीं है तो हम पेरेंट्स को एडवाइस कर देते हैं, प्लीज इसको इस रास्ते पर मत लगाना, बेचारी चल नहीं पाएगी। क्यों? ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हम राह चलते किसी को भी नहीं रख सकते, ये हमारा लॉ है। मैं जहां रहती हूं अच्छी अच्छी महिलाएं अच्छे अच्छे घरों की ब्यूटीफुल, इतना इतना सोना पहना हुआ है, आंखों में आंसू, मैं घर नहीं जाना चाहती। हमारी मजबूरी, हम आपको नहीं रख सकते। फिर हम उनको ऑल इंडिया वेमेन कॉन्फ्रेंस है या दूसरे, हम उनको रेफर कर देते हैं, हम नहीं रख सकते। क्यों? या बेसिक स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड। अगर पवित्रता की जीवन में धारणा नहीं है तो संस्था की फाउंडेशन हिलती है, हमारी फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो इस प्रकार से माता पिता के साथ आने वाली कन्याएं, फिर हम कन्याओं को एनकरेज करते हैं कि आपको पढ़ाई अच्छी पढ़नी है, अपने पांव पे खड़े रहने योग्य बनना है, आज का जमाना वो है। उसके बाद अगर कन्या का दिल करता है फिर भी मैं अपना जीवन समर्पित करूं, तो पहले उनकी ट्रेनिंग चलती है। 18 वर्ष से कम आयु के हम लेते नहीं, उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम इनको सेंटरों पर भेजते हैं, सेंटरों पर इनके संस्कारों का टेस्ट होता है। उसके बाद मेरे साथ जो रहती है वो मेरे साथ तो चल जाएंगे, कल को इनके साथ में भेजूं वहां पर रहने के लिए, वहां भी तो वो सफल होनी चाहिए। तो चेंज करते रहते हैं ताकि सब जगह ये लोग एडजस्ट हो सकें, क्योंकि पब्लिक सर्विस में है। जब इस प्रकार उनके 5-6 साल हो जाते हैं, इनको 4 सर्टिफिकेट लेने हैं। खुद की संतुष्टि का सर्टिफिकेट, माता पिता की संतुष्टि का सर्टिफिकेट, टीचर जहां पर जिसके अंडर है उसकी संतुष्टि का, जिनकी सेवा करते हैं उनकी संतुष्टि का, ये 4 सर्टिफिकेट लेने होते हैं। और जब सब चीज क्लियर है तब हम इनको समर्पित करते हैं और हम घर से संबंध तोड़वाते नहीं हैं। आपने जिस बच्ची को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया लायक बनाया, हम उसको कहें तुम अपने घर से संबंध तोड़ दो, नेवर। माता पिता ने क्या बिगाड़ा है, संबंधियों ने क्या बिगाड़ा है? हाँ, लाइबिलिटीज होती हैं तो अलग चीज है, उसमें फिर हम उनको लेते नहीं है क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है। लेकिन जो फ्री होती हैं उनको ही हम इनकार्ज करते हैं। इस प्रकार बहने चलते, ठीक है। और कोई? हाँ, ये भाई बहन बनाती है। भाई बहन नहीं बनाते, सीधी सी बात है, अगर आप कुछ जीवन में ऊंचा चाहते हैं प्राप्त करना तो आपको कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है, बिना उसके तो नहीं प्राप्त होता। क्या कहते, तप से राज, राज से नर, कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं। ये जो है सर्कल है, 5 विकारों को जीतना है ये जीवन का लक्ष्य। कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, आप अपने जीवन को जैसे जीना चाहोगे। ये एक संस्था है जो कभी भी ये नहीं कहती है कि भौतिकवाद बुरा है, नहीं, हम कहते दोनों का बैलेंस रखो। आपका भाग्य है, धन भाग्य है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास धन है, या आपका भाग्य, आपके कर्मों का भाग्य है। हाँ, उसके साथ साथ 2 टाइटल होते हैं विश्व महाराजन के, हिज हाइनेस एंड हिज होलीनेस। केवल भौतिकता को, आध्यात्मिकता का बैलेंस ना हो वो टिल्ट कर जाएगा। लेकिन यहां सिखाते हैं, आप श्री लक्ष्मी से नारायण देखिए कितने गॉर्जियसली ड्रेस्ड अप हैं, हीरे जवाहरात उनके कपड़ों में जड़े हुए हैं, कितने आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं, 56 प्रकार के भोग उनको स्वीकार कराते, खाते एक भी नहीं है, एक हिसाब से बहुत मटेरियलिस्टिक है, उसके बावजूद इनकी पूजा होती है। क्यों? सर्वगुण संपन्न है, 16 कलर संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, पूजनीय है। अपने जीवन को उन्होंने ऐसा दैवी बनाया। तो ये लक्ष्य जिसमें बैलेंसिंग हम सिखाते हैं, दोनों बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी हायर पेडेस्टल, ताकि आप भौतिकता को भी एड्रेस कर सके, भौतिकता को भी हैंडल, भौतिकता हमारी मास्टर ना बने, इट शुड बी अंडर आवर थंब, ठीक है। इस प्रकार से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के वर्तमान समय 4,500 केंद्र, और कल आपको विधात्री बहन ने बहुत विस्तार में प्रेजेंटेशन के द्वारा सारा बताया, हमारे कितने विंग्स हैं, कितने हैं, क्या, वो कल सब आपने देखा। और आज मोहिनी दीदी ने बताया। अब और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते, नहीं तो यहाँ क्लोज करें। अभी सब स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हुआ जी? हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगी। हाँ, मैं बताते एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। बाबा को विधाते बना, बाबा को हम गुरु नहीं मानते। गुरु केवल एक है, परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु। बाकी बाबा भी केवल माध्यम थे, गुरु नहीं थे। आपके और हमारे जैसे थे जिन्होंने भी अपने जीवन को ऊंचा बनाने का प्रयास किया। बाकी बाबा के बच्चों के बारे में आपने पूछा है, 5 बच्चे थे जिसमें से जो बेटे थे, बेटों की डेथ हो जाती है पहले। एक बेटा, उसकी अभी डेथ हुई है, पहला एक बेटा उसकी पहले ही हो गई थी, बहुत वर्ष कराची में ही हो गई थी। लेकिन जो दूसरा नारायण भाई थे वो मुंबई में रहते थे, और अभी मैं समझती 2-3 वर्ष पहले उनकी डेथ हुई है। बाबा का पोतरा है, पोतरे की भी डेथ हो गई है, उसकी भी डेथ हो गई है। एक उनकी बेटी है रत्ना, केवल एक, बहुत बुजुर्ग हो गई है, वो मुंबई में है। और बाबा की जो पुत्र वधु थी राधिका ब्रजेंद्र, उनकी भी डेथ हो गई। दादी निर्मल शांता जो बेटी थी, वो हमारे सारे ईस्टर्न जोन की इंचार्ज थी, उनकी भी डेथ हो गई। इन सबके साथ मेरा भाग्य, मैं सबके साथ रही, सबका सानिध्य प्राप्त किया है। लेकिन आज वो लोग नहीं है, काफी एज हो गई ना, 1930s की पैदा हुए और आज तो बहुत 100 साल के करीब हो रहे हैं, तो नहीं 100 साल से प्लस। और ऐसे ही ब्रजेंद्र दादी, राधिका और ये रत्ना भी है, तो 3 बेटियां। हाँ, बाबा ने ये कोई गद्दी नहीं है कि बाबा के बाद उनका बेटा बैठेगा, बेटे के बाद उसका, नो, नॉट एट ऑल। जो आने वाले थे उसमें जो बेस्ट थी वो थी दादी प्रकाशमणि, जिसका चित्र आप देखते हैं इस साइड पर। दादी प्रकाशमणि ये फर्स्ट चीफ बनी, मातेश्वरी जी के पश्चात ये फर्स्ट चीफ थी। इनके बाद दादी जानकी थी, जो भी कोई ब्लड रिलेटेड नहीं थी। उनके बाद दादी गुलजार थी, जो भी ब्लड रिलेशन नहीं था। उसके बाद दादी रतन मोहिनी थी, जिन्होंने अभी 4-5 महीना पहले शरीर छोड़ा है। और उनके जाने के बाद अभी दीदी मोहिनी, जो कि अभी आप लोगों से शाम को मिली है। ये कोई ब्लड रिलेशन वाली बात नहीं। और कोई बात? मेरे को एग्जैक्ट वो तो नहीं पता। बाबा ने 93 में 1800 समथिंग में था, 76 था ये क्या था। बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो 93 के थे। माउंट आबू में, यहां शरीर छोड़ा माउंट आबू ऊपर 1876 था शहर। कैसे छोड़ा बाबा? उस दिन बाबा को थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम चालू हुई थी, एक दिन पहले 18 जनवरी 1969। तो 17th को बाबा को थोड़ी हार्ट प्रॉब्लम थी, परंतु बाबा ने उसको इग्नोर किया और सारे कार्य जो थे वो बाबा ने संपन्न किए। 18 जनवरी को भी बाबा ने अपने पूरे जितने हिसाब किताब थे सब कुछ, उनको जैसे पता होगा मैं जाने वाला हूँ, जैसे सब कुछ क्लियर, पूरे सब डायरेक्शन क्लियर दिए। उसकी स्टोरी अलग हो जाएगी पूरी, काफी टाइम है। सब डायरेक्शन क्लियर दिए, जो जिसके साथ अकाउंट सेटल करने थे सब सेटल किए, मकान बन रहा था उसके डायरेक्शन दिए, आदि आदि सब। और शाम को बाबा क्लास में जाते हैं, जैसे रोज जाते थे सवेरे शाम, शाम को क्लास में जाते हैं। क्लास में जाने के पश्चात फर्स्ट टाइम बाबा ने बच्चों से जैसे गुड नाइट करते थे ना, तो उस दिन कहा अच्छा छुट्टी लेता विदाई। फर्स्ट टाइम का बाबा कभी बच्चों को पीठ नहीं दिखाते थे, बैठते थे फिर वहां पहुंच जाते थे गेट पर, फिर ऐसे पीठ नहीं दिखाते थे, सबको दृष्टि देते हुए वहां खड़े होके बाबा कहते थे अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग करके। उस दिन कहा फर्स्ट टाइम अच्छा बाबा छुट्टी लेता है विदाई। तो किसी ने समझा ही नहीं, हमको तो मन चित्त में नहीं था कि ऐसा होगा, समझा ही नहीं। बस उसके बाद बाबा जाते, थोड़ा हार्ट में बाबा ने कहा दर्द हो रही है, डॉक्टर को बुलाया गया, जब तक डॉक्टर आए पंछी उड़ गया। उस मुरली में बाबा ने कहा जैसे जीवन के तीन प्रमुख बातें, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भाव, ये तीन चीजें बाबा ने की जो हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है, निराकारी भाव, निर्विकारी भाव और निरअहंकारी भाव। उसके बाद फिर दादी प्रकाशमणि को रखा गया। और हाँ, आपने बाबा की युगल के बारे में नहीं पूछा, बाबा की वाइफ, बाबा की जो वाइफ थी वो भी ऐसे थी जैसे अन्य बहनें ऐसे थी। देखिए जबरदस्त परिवर्तन है, वो व्यक्ति जो पति इतनी प्योरिटी की पावर बाबा में थी, जो बाबा ने डेवलप की, जो जसोदा माता अब बाबा को पति के रूप में नहीं देखती थी, जसोदा माता बाबा के पति के रूप से भक्ति भी करती रही है भक्ति में, जैसे कोई भगत होता है ना पति का भगत, ऐसे थी। लेकिन बाबा की बेहद निराकारी और प्योरिटी की ताकत जिसने सबकी बुद्धियों को चेंज कर दिया और उनकी बुद्धि को भी चेंज, फीलिंग ही नहीं आती थी कि ये कोई इनके पति रहे हैं। पति की तो बात छोड़िए, बेटे और बहू और बेटी, उसकी फीलिंग भी नहीं आती थी कि ये बाबा की बेटी है, ये बाबा की ये है, फीलिंग भी नहीं आती थी। ये विशेषता थी, इतना उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से स्वयं को शक्तिशाली बना लिया था। ओके।
किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें दीदी, नहीं तो इस संस्था में आए और यहाँ के बारे में ही ना जाने तो एक बहुत बड़े रहस्य से हम सभी चूक जाते। तो दीदी ने खास ये समय निकाल करके रात्रि में हम सभी से मिले, और जैसे एक परिवार में कोई बड़ा होता है कोई कहानी सुनाता है इस तरह से, दीदी ने हमें वो अतीत के पलों में दीदी ले गए जो दीदी ने तो जिए और हम भी ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कि हम भी अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब कुछ अभी भी होते हुए। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठ करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओम शांति।